स्वामी जी कहते हैं पूरी सभा हिल गई, लेकिन दो नहीं डोले, एक धनुष और दूसरे राम, वो वैसे के वैसे, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, कोई उस पर असर नहीं। तो जब लखन की बाणी से सब डोलने लगे और राम अभी भी वैसे के वैसे बैठे हैं, तो लखन जी से रहा नहीं गया और राम जी को कहने लगे, महाराज मैं इतना जोर से बोल रहा हूं और आप अभी तक चुप है, मेरे सामने तो देखिए क्रोध के मारे मेरा पूरा बदन लाल हो चुका है, मैं पूरा लाल हो गया और अभी आप शांत। तब भगवान ने इशारे में कहा कि लखन सुबह में पहले आकाश लाल होता है, बाद में ही सूरज निकलता है, तुमने आकाश को लाल कर दिया, अब सूरज का उदय मैं कर दूंगा। लखन आकाश में पहले मेघ की गर्जना होती है, बाद में बारिश होती है, गर्जना तुमने कर दी। अशाद का घूमी है लूंगी है अंबार बताओ के वाले तो वाली लंबा हलार ना, ये कविता है ना, मैं पुनः स्पष्टता कर दूं, आपको लगेगा कि धड़ाधड़ क्या आता है, लिखना भी कठिन बोलना भी कठिन समझना भी कठिन बहुत गहन कठिन, वर्षा का वर्णन है। प्रसाद घर घूमिए लूमिए अंबर बताल देवल चोवली महलार महलिए लाडगा हलिए नीम चले समय नड़ी इंद्र का दिया गाज करे घर ऊपर हम नया सारी उभरी अजमान में तू तन कुंवर या मन कोई तनी रित संभरी मन कोई तनी रित संभरी यंभी कोई तनी रित संभरी। प्रसाद घर घूमिए लूमिए अंबर बताल देवल चोवली महलार नीम गाय लिए नीम चले। लखन पहले मेघ की गर्जना होती है, बाद में बारिश होती है, तुमने गर्जना कर दी, अब कृपा की बारिश में कर दूंगा। भगवान ने लखन को इशारा कर दिया और लखन बैठ गए। तुलसीदास जी ने लिखा नहीं भगवान ने इशारे में क्या कहा, इसलिए महात्मा लोग बहुत ढूंढते हैं कि क्या इशारा किया होगा, इशारे में लोगों को बहुत रस होता, कहीं भी इशारा तो लोग बहुत गंभीर हो जाएंगे, मामला क्या है। यहां इशारा रघुपति लखन ही, रघुपति लखन ही सहन निवार, एक इशारा कर दिया, सहन कर दी, तो क्या इशारा किया होगा। राम जी ने यह तो नहीं किया होगा कि तुम कहां खड़े हो गए, बैठो मुझे तोड़ना, ऐसा तो नहीं कहा। एक संत ने बताया इशारे में, राम जी ने विश्वामित्र जी को बताया, लखन जब जनक बोले कि दुनिया में कोई वीर नहीं रहा, तब तुझसे ज्यादा गुस्सा मुझे आ गया कि मैं अभी बता दूं जनक जी को, लेकिन बाबा बैठे हैं उसकी आज्ञा के बिना उठना मर्यादा का भंग है, वो बाबा बोले तब उठा जाए, वो आज हमारे पिता की भूमिका निभा रहे हैं, दशरथ जी ने जब हमको सौंपा पिता ने, तब विश्वामित्र जी को कहा था तुम मुनि पिता आन नहीं को, आज से हमारे ये दोनों पुत्र के आप पिता हैं। तो इशारा लखन को नहीं था, बाबा विश्वामित्र जी को था, और विश्वामित्र समझ गए कि राम मुझे कुछ कह रहे हैं, और तुरंत उसका दाएं हाथ उठा और राम जी के पीठ पर लगाते हुए विश्वामित्र जी बोल गए, राघव हाँ प्रभु, उठ हूँ राम भंजग भवता, उठ गाइए साहब, उठ हूँ राम भंजग भवता, मेटहु तात जनक परिताता, मेटहु तात जनक परिताता, उठहु राम भवचापा। विश्वामित्र जी ने राम जी को कहा, राघव उठो और धनुष तोड़ डालो, एक कदम आगे विश्वामित्र जी, वरना तो ऐसा कहना चाहिए कि धनुष चढ़ा दो और बात पूरी हो जाए, लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा तोड़ दो, तोड़ने की सूचना क्यों दी। ये भगवान पिनाक पाणि का धनुष यदि ऐसे बचा रहा होता तो दुनिया के लिए मार्गदर्शक बनता, लेकिन विश्वामित्र जी ये बताना चाहते हैं कि धनुष अहंकार का प्रतीक है, उसको तोड़ना ही चाहिए, अहंकार को चढ़ाना नहीं चाहिए, उसको तोड़ दो, और ये अहंकार का धनुष इसलिए जनक के पास आया है शिव जी के द्वारा कि भगवान के हाथ में जाकर टूट जाना ताकि तेरी मुक्ति हो जाए। आज तक तुमने चढ़ाया गया, तुम पर तीर चढ़ाए गए, तुम पर रस्सी बांधी, डोरी बांधी गई, तुम्हें बंधन लगता रहा, लेकिन परमात्मा के हाथ में जाकर टूट जाना ताकि तेरी मुक्ति हो जाए। तोड़ो। भगवान राम खड़े हुए मंच पर, गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रभु जब मंच पर खड़े हुए तो कैसा लगा, देखिए उपमा। बाबा जी, उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज बन हर्षे लोचन ब्रिंग। उदयाचल पर्वत के शिखर को तोड़कर मानो सुबह का सूर्य नारायण उदित हो रहा, और जब सूरज निकलता है तो अंधेरा नष्ट होता है, रात्रि नष्ट होती है, कमल खिलने लगते हैं, आकाश के नक्षत्र विलीन होते हैं। तो जब राम रूपी सूरज निकला तो कमल कौन से खिले, बिकसे संत सरोज बन, मंडप में जितने संत बैठे थे उसके मन रूपी कमल खिलने लगे, और हर्षे लोचन भृंग, उसके नेत्र के भंवरे गुंजारों का, क्योंकि अभिमानी राजा जब उठते थे धनुष को तोड़ने के तब सब संत लोग आंखें बंद कर बैठे थे कि हमको देखना नहीं, लेकिन जब राम रूपी सूर्योदय हुआ तो मन का कमल विकसित हो गया और आंखों के भंवरे गुंजारों करने लगे। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, अब इच्छा खत्म हो गई, यानी अब सीता मिलने वाली नहीं, न बोलने जैसे शब्द राजा महाराजे बोलते थे वो नक्षत्र के तेज विलीन हो गए, और भगवान विश्वामित्र जी के चरणों में वंदन करके मानो पर्वत के शिखर से कोई शेर नीचे उतर रहा हो, ऐसे कौशल्यानंदन जब गुरु के आशीर्वाद को लेकर मंच से नीचे आने लगे, सभी निगाहें राम के ऊपर लगी हुई, और भगवान जब धरती पर कदम रख के धनुष की ओर जब आगे बढ़े, तब सुनैना ने देखा जनक की पाप महिषी धर्मपत्नी सुनैना एकदम घबरा गई, अपनी सखी को कहने लगी कि सखी आज इस मंडप में जितने लोग आए हैं सब कौतुक देखने वाले हैं, रावण और बाणासुर जिस धनुष को कुछ कर नहीं पाया उसको ये राजकुमार कर सकेगा क्या, कल हम कौशल्या को मुंह क्या दिखाएंगे, वात्सल्य भाव है। सुनैना, जनक जी को कहो कि इस बालक को रोक ले, ये बालक धनुष नहीं तोड़ पाएगा, उसकी उम्र कितनी कोमल है। सुनैना की सखी ने कहा, देवी आपने ये कैसे मान लिया कि ये राम धनुष नहीं तोड़ पाएगा, बोले उसकी उम्र देखो। सखी ने कहा, देवी माफ करें, तेजस्वी को कभी छोटा मत समझे, भारत की संस्कृति उम्र से महान नहीं मानती, अंतःकरण की विशुद्धि से महान मानती, यहां ज्ञान को प्रधानता दी गई है उम्र को नहीं, कौन कितना उम्र वाला वो महत्व का नहीं, ज्ञान की प्रधानता भारत में। सूर्यदेव उदित होते हैं तब छोटे होते हैं, लेकिन उदय होते ही ब्रह्मांड का अंधेरा खत्म होता है, तो क्या सूर्य को छोटा समझे, कामदेव पुष्प के बाणों से पूरे जगत को वशीभूत कर लेता है, तो क्या कामदेव को हम छोटा समझे, दो फुट का अंकुश हाथी जैसे मदमस्त प्राणी को वशीभूत कर ले तो क्या अंकुश को हम छोटा समझे, और मंत्र बिल्कुल छोटा सा हो तो भी ब्रह्मादि देवताओं को अधीन कर दे तो क्या मंत्र को हम छोटा समझे, देवी राम दिखाओ में छोटे हैं, वास्तव में वो ब्रह्म है। सुनैना के मन का समाधान हो गया, यहाँ राम जी धनुष के पास पहुंच गए, अभिमानी लोग ईर्ष्या से, सात्विक लोग सात्विक भाव से, महिलाएं अपने अपने मानता करने लगी कि राम जी के हाथ धनुष टूट जाए ताकि हमारी जान की उसके कंठ में जयमाला, पूरा समाज अपनी अपनी रुचि के अनुसार भगवान के प्रति देख रहे थे, भगवान ने धनुष को देखा, और यहाँ जरूखे में बैठी वैदेही देखती है कि राम धनुष के पास आ गए, और भगवान धनुष तोड़ने में बहुत विलंब करने लगे, बहुत विलंब किया है प्रभु ने, सीता जी को एक एक पलयुग की तरह बीतने लगा, और जानकी जी बहुत अकुलाने लगी, देवताओं की स्तुति करने लगी, हे देवताओं इसमें मदद करे, राम जी के हाथ धनुष टूट जाए, गणपति को खास सीता जी याद करने लगी कि हे गणेश जी आपको मैं आज तक पूजा है, राम जी के हाथ धनुष टूट जाए इसमें आप बहुत मदद करें। गणपति को क्यों याद किया, दो तीन कारण है, एक तो विघ्नहर्ता देव है इसलिए उसका स्मरण करे तो धनुष भंग में कोई विघ्न न हो, दूसरी बात सीता जी को भय लगा, एक बात यह हुई कि धनुष जब लाया गया था जनकपुरी में तब हाथियों की सूंड के द्वारा खींचा गया, तो सीता जी को लगा कि गणपति को हाथी का चेहरा है तो उसको मैं तो विनती करूं तो वो भगवान को मदद करे तो सूंड से एकदम उठा ले तो सरल हो जाए, अथवा तो सीता जी को लगा कि गणपति की स्तुति इसलिए कि धनुष शंकर जी का है और भगवान के हाथ यदि टूट जाए और शंकर जी गुस्सा करे तो कि मेरा धनुष किसने तोड़ दिया, लेकिन गणपति यदि भगवान को मदद करे गणेश तो टूटने के बाद शंकर गुस्सा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि घर का बेटा ही काम में लगा, अब किससे किसको डांटे किसको फरियाद करे। अथवा तो शंकर के पास जो जो चीज होती है वो सब अपने गण मानी जाती है, तो धनुष भी गण थे, शंकर का एक गण माना गया धनुष, और गणपति गणों के पति हैं, तो गणपति को इसलिए याद किया गया कि हे गणेश जी तुम इस शंकर के धनुष रूपी गण को सूचना दे दो कि भगवान के हाथों जल्दी टूट जाए, आप इतना करें। तो गणपति की स्तुति यहाँ की है, बाबा जी लिखते हैं
गणनायक बरदा यत देवा आज लगी की तू से आज लगी आज लगी गणनायक बरदायक देवा
हे वरदायक देव आप धनुष टूटे उसमें मदद करें। शिव जी को भी प्रार्थना की और अंत में सीता जी धनुष की स्तुति करने लगे। अब वही शंभु चाप गति तोड़ी, धनुष तुम ही हल्का हो जाओ प्रभु के खातिर। भगवान ने बहुत विलंब किया, कारण ये कि सीता जी बिलग बिलग देव को मना रही थी। भगवान कहते हैं जब तक पूर्ण शरणागति नहीं होती तब तक मैं आता नहीं, जिसको प्रार्थना करनी हो कर लो, जितने देव को बुलाना हो बुला लो, मैं खड़ा हूँ, भगवान कहते। और सीता सबको प्रार्थना करती रही, धनुष को भी प्रार्थना की, भगवान ने बहुत विलंब कर दिया। अब जानकी जी बहुत व्यथित है, एक एक पल युग की तरह बीतने लगी सीता जी को, और भगवान ने देखा कि मैंने बहुत विलंब कर दिया, अब शायद मैं विलंब करूंगा तो जानकी प्राण छोड़ देगी, और सीता प्राण छोड़ देगी तो धनुष तोड़ने का कोई अर्थ नहीं, पानी पानी की करता हुआ आदमी मर जाए और मरने के बाद उसके सामने अमृत का तालाब खड़ा कर दे तो क्या अर्थ, बिना पानी खेती सूख जाए और बाद में मूसलाधार वर्षा हो तो क्या, और समय बीत जाए उसके बाद में पछतावा हो तो क्या अर्थ। ऐसे राम जी को लगा कि अब विलंब करना ठीक नहीं, क्योंकि तो जानकी रामाकार होने लगी है, एक एक पल युग की तरह बीतने, शायद प्राण छोड़ दे। परमात्मा गंभीरता को समझ गए, माता पिता को याद किया, गुरुदेव को याद किया, विश्वामित्र जी के सामने देखकर कृपा दृष्टि पाली, और बाबा जी कहते हैं भगवान राम जी ने धनुष के प्रति ऐसे देखा कि मानो गरुड़ छोटे से सर्प को देख रहे हैं, भगपति जैसे छोटे से सर्प को देखें, ऐसी सहज दृष्टि से जब धनुष के प्रति भगवान ने देखा, धनुष के इस छोर और उस छोर दोनों के प्रति जब निगाहें टिकाई तो महात्मा लोग कहते हैं धनुष अपने आप हिलने लगा, इतनी दृष्टि की असर हुई, सारी सभा उठने की तैयारी की क्या होने वाला, जानकी जी एकदम एकाग्रता से देखने लगी हुआ क्या क्या होने वाला, सुनैना जना सब एकाग्र, भगवान राम इतनी छोटी उम्र में क्या करेंगे, सब देख रहे हैं। धनुष के प्रति परमात्मा की निगाह बिल्कुल टिक गई, विश्वामित्र जी देख रहे हैं और यहां लखन जी से नहीं रहा गए, विश्वामित्र जी की बाई ओर बैठे लखन जी मंडप में मंच पर खड़े हो गए और दोनों पैरों से अपने मंच को दबाने लगे। विश्वामित्र जी ने देखा, लखन को कहा लखन तुम बैठ जा, तोड़ना राम को है, तुम क्यों खड़े बैठो। लखन जी ने कहा बाबा मैं ऐसे नहीं खड़ा हुआ, तो मुझे आज डर लग रहा है कि भगवान जब धनुष तोड़ेंगे तब शायद दिग्पालों के मुंह से ये धरा का छोर छूट जाएगा, मैं शेष का अवतार हूं और मेरे सर पर से यदि धरा गिर गई तो बेटी की शादी में यदि मां को कुछ हो गया तो शादी में विघ्न हो जाएगा, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं इस धरा को सावजन कर दूं। दिग्पालों को लखन जी ने कहा कि दिग्पाल सावधान हो जाइए, भगवान धनुष तोड़ने की तैयारी में है, अपने दांतों में धरती को ठीक से पकड़ लो, कमट को कछुए को सबको सावधान कर दिया, चरण कांपी ब्रह्मांड, लखन जी ने चरण से ब्रह्मांड को दबा दिया ताकि हिल न पाए।
विश्वामित्र जी दोनों की ओर देख रहे हैं, यहाँ लखन खड़े हैं, यहाँ भगवान खड़े हैं, धनुष हिल रहा है। सब राजे महाराज देख रहे हैं क्या होगा क्या होगा, पूरा मंडप भरा हुआ। भगवान ने ठीक से फैसला कर लिया कि ऐसे तोड़ा जाए और सब लोगों की निगाह है धनुष पर थी। अपने आप धनुष उठा, सब हैरान ये कैसे हो रहा है। धनुष का एक छोर जैसे उठा मानो पूरे मंडप में बिजली की चमक हो गई, बिजली हुई, सबकी आंखों को प्रकाशन कर गई। सब राजे महाराजे धनुष जब उठा वो बिजली की तरह उठा, इसलिए सब अपनी आंख मचलने लगे, कोई देख नहीं सके कि राम कहां धनुष कहां, ये कैसे हो रहा है। विश्वामित्र के साथ सब सोच रहे हैं और सब अपनी आंख मचल कर ठीक से देखे। इतनी बार में एक क्षण के मध्य भाग में बाबा जी ने लिख दिया, क्षण शुरू हुई और पूर्ण हो उसके पूर्व मध्य भाग में इतने समय में धनुष तोड़ दिया। एक संत ने कहा नहीं तो भगवान ने धनुष को बिल्कुल मध्य भाग से तोड़ा, क्योंकि भगवान एक छोर से तोड़ते तो शायद अभिमानी राजा ये कहते हैं कि बीच वाला भाग ज्यादा पुष्ट होता है, छोर वाला भाग तो हल्का होता है, छोर तोड़ डाला उसमें शौर्य कहां, इसलिए कोई कह ना पाए, इसलिए एक संत ने कहा नहीं, भगवान ने मध्य में तोड़ा मानो पूरी सभा के मध्य भाग में तोड़ा। शायद कल को ये ना कहे कि खानगी ने तोड़ दिया था, सबकी निगाहों के बीच में ते ही चले राम मध्य धनु तोड़ा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। एक संत ने कहा नहीं, भारत में तीन धनुष बड़े, राम का सारंग, शंकर का पिनाक और अर्जुन का गांडी। प्रथम सारंग, मध्य वाला पिनाक और तीसरा गांडी। आज भगवान ने पिनाक को तोड़ा, बीच वाला धनुष को तोड़ा, इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं तेरे ही साथ है राम मध्य धनु को हाय भुवन धुनि घोर कठोरा तेरे ही साथ राम मध्य धनु तोड़ा। एक संत ने कहा नहीं, भगवान ने दोपहर को 12 बजे मध्य दिवस में धनुष को तोड़ा, शायद कल कोई ये कहे कि संध्या के समय अंधेरे में तोड़ डाला, हमको कहां पता, इसलिए सूरज के उजाले में मध्य दिन में तोड़ा तेरे ही छाने राम मध्य धन तोड़ा भरे भुवन भूमि घोर तेरे ही छाने। एक संत ने कहा नहीं, भगवान बिल्कुल बालक नहीं है और वृद्ध भी नहीं है, उसकी मध्यस्थ अवस्था है, युवा अवस्था है, मध्य भाग की अवस्था में तोड़ा तेरी चले राम मध्य धन तोड़ा भय भुवन धुनि घोर कठोरा। अरे जी भय भुवन धुनि घोर कठोरा। परमात्मा ने जैसे मध्य भाग से धनुष को तोड़ा और टूटने की जो आवाज हुई गोस्वामी जी ने लिख दी, कैसी परिस्थिति हो गई समाज में जब धनुष का भंग हुआ। बाबा जी कहते हैं भगवान ने धनुष का भंग किया तो इतनी आवाज हुई कि सूर्य नारायण का रथ पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा था, वो दक्षिण में चला गया।
सूर्य की गति पलट गई।
परिभुवन घोर कठोर राम रविपाद प्रतिमारक परिभुवन घोर कठोर।
और दूसरा क्या हुआ?
चित्कर ही दिग्गज दिग्पाल कांपने लगे।
चित्कर ही दिग्गज तो मैया ही को पूरम कल मले।
धरती हिलने लगी कौन और पूरम कल मलने लगे। स्वर्ग के देवता लोग कान पर हाथ दे दे कि आवाज किसकी। नाग देवता पाताल में कांपने लगे और विंध्याचल की तलेटी में 80,000 वर्ष की साधना में डूबे महात्मा की समाधि टूट गई।
सूर्य सुर मुनि कर दान दीन फसल विकल विचार जी।
सब कान पर हाथ रखकर सोचने लगा ये क्या हुआ क्या हुआ, कोई निर्णय नहीं कर पाया। इतने में तुलसीदास जी ने घोषणा कर दी
जय जय की वचन उचार रही जय जय की वचन उचार रही।
गोस्वामी जी ने जाहिरात कर दी। भगवान ने धनुष भंग किया पूरे ब्रह्मांड में समाचार फैल गया। बोलिए
रामचंद्र भगवान।
तुलसीदास जी कहते हैं परमात्मा के हाथों से धनुष को धरती पर गिरा दिया गया। सब लोग जय घोष से गुंज गए। पूरे ब्रह्मांड में महिपाताल नाक जस व्यापा राम बरी सी भंजे चापा। लोग आनंद विभोर हो गए। भगवान ने इतना बड़ा कार्य किया फिर भी वो सहज खड़े। विश्वामित्र जी गदगदित हो गए। मंच पर से नीचे आए और राम जी ने सहज भाव से जब प्रणाम किया तब विश्वामित्र बोल नहीं सके। धन्य राघव हम ऋषियों को उजागर कर दिया। और लखन तो इतने आनंद में है आज कि मंच से सोपान पर से नीचे नहीं उतरे, सीधे कूद कर नीचे आए छलांग मार के। और नीचे आकर राम जी के सामने बाद में देखते हैं लेकिन जनक जी के सामने खास देख रहे हैं कि आप कहते थे ना कोई नहीं देखा, दूसरा हो तो मुझे दो। जनक संकोच अनुभव कर रहे हैं। बोले हुए शब्द का पछतावा होने लगा और अपनी बेटी को योग्य पुरुष मिला उसकी बड़ी खुशी है। सुने इलाकी खुशी कैसे बखाने। और उस वक्त जानकी का आनंद वर्णन करने में कवियों के पास शब्द नहीं। पूरे लोग घिर चुके हैं प्रभु को देखने के। लखन जी भगवान के सामने देख रहे, विश्वामित्र जी खड़े हैं, जनक सुनैना सब आए और यहाँ सखियां सीता जी को लेकर राम के पास काफी भीड़। हाथ में जयमाला सीता जी और आई। सखियों ने गीत गाया और सीता को कहा कि राम के कंठ में जयमाला पहना दो। सीता जी ने दोनों हाथ से माला उठाए भगवान के कंठ में पहनाने के लिए और भगवान ने अपना सर झुकाया लेकिन सीता जी ने माला पहनाई नहीं। बहुत देर कर दी, बस वैसे ही खड़ी रही। भगवान कब से खड़े हैं सर झुकाकर लेकिन माला पहनाती ही नहीं। तो एक सखी ने सीता जी को कहा कि भगवान कब से सर झुकाए खड़े हैं, पहना दो, इतने लोग तेरे सामने देख रहे हैं, क्यों विलंब कर रही हो, पहना दो ना। तब सीता ने कहा सखिया तुम चुप रहो, अब सब काबू मेरे हाथ में है। आज तक मैं तुम्हारी कही मानती थी लेकिन अब आप चुप रहे, मैं जो करूँ सो ठीक है। बहुत देर लगी तो राम जी ने मन ही मन सीता जी को पूछा कि जानकी जी मैं कब से सर झुकाए खड़ा हूँ, आप माला पहना दो ना, कितना विलंब करोगे। तब सीता जी ने मन ही मन जवाब दिया कि तोड़ने में आपने बहुत विलंब किया है, अब तो हिसाब ठीक हो रहा है महाराज। और सीता जी ने मन ही मन कहा कि महाराज तोड़ने में आपने विलंब किया, ये तो जोड़ने की बात है, जोड़ने में विलंब विलंब वो तो न्यायी बात है, तोड़ने में तो तुरंत हो सकता है, जोड़ना ही कठिन है, तो मैं तो जोड़ने में विलंब कर रही। भगवान ने कहा ठीक है देवी लेकिन मेरे विलंब से आपका विलंब बहुत गुना बढ़ चुका है, अब तो पहना दो, मैं कब से सर झुकाए खड़ा हूं। बोले महाराज इसलिए तो मैं विलंब कर रही हूं क्योंकि आप ज्ञान हैं, मैं भक्ति हूं और भक्ति के सामने ज्ञान सर झुकाकर खड़ा रहे उसी में ही उसकी शोभा। तुलसी दर्शन। भगवान ने कहा ठीक है लेकिन इतने राजे महाराजे देख रहे हैं, एक तो हमारी ईर्ष्या कर रहे हैं, धनुष टूटा तो ज्यादा ईर्ष्या करेंगे और उसमें मैं सर झुकाए खड़ा हूं तो ये लोग ईर्ष्या से बोलेंगे कि भले ही धनुष तोड़ डाला लेकिन है कुछ नहीं, अभी से सर झुकाए खड़ा उसमें है क्या,
ऐसा बोलेंगे ये लोग।
तो सीता जी ने कहा, प्रभु मैं इसलिए तो विलंब करती हूँ कि मैं इन अभिमानी राजाओं को बताना चाहती हूँ कि तुमने धनुष नहीं तोड़ा, फिर भी सर ऊपर उठाए चले रहे हो, और राम जी ने तोड़ दिया तो भी कितने विनम्र हैं।
विनम्रता क्या है और अहंता क्या है, भक्ति कहती है मैं समाज को दिखाना चाहती हूँ कि दुनिया में अहंकार क्या है और विनम्रता क्या है।
एक संत ने कहा, नहीं, भगवान के कंठ में सीता जी जयमाला नहीं पहना सकी, उसका एक कारण यह था कि सीता और राम की उम्र में ज्यादातर, सर्वमति नहीं कहूं लेकिन बहुमति जरूर कहूं, 9 साल का फर्क है उम्र में। जानकी जी भगवान से 9 साल छोटी, तो भगवान की उम्र के अनुसार उसकी ऊंचाई है, सीता की ऊंचाई उसकी उम्र के, इसलिए जानकी जी कितना भी चाहे तो भी राम के कंठ तक पहुंच नहीं पाती। भगवान झुके हैं जरूर लेकिन वो भी रघुवंशी हैं, उसकी भी मर्यादा है, जितना झुकना चाहिए इतना झुके हैं। एक सखी ने सीता जी को कहा कि कब पहनाओगे, बोले तुम चुप रहो, बोले बस स्थिर हो गई, मामला क्या है, बोले चुप रहो, क्या कि वैसे सबके सामने भगवान के चेहरे को देखना मर्यादा का उल्लंघन है, लेकिन मैंने ऐसे हाथ किया ना तो मेरे कंगन में सूर्य की किरणों के साथ परमात्मा की छवि दिखाई देती है, मैं ऐसे करूंगी ना तो छवि दिखाई देती बंद हो जाएगी। और नारी का राम उसके कंगन में ही हुआ करता है, उसके कंगन में ही उसका पति है, उसका ईश्वर उसके कंगन में ही रहता है। तो अब करे क्या, सीता जी पहुंच नहीं पाती और राम ज्यादा झुकते नहीं। विश्वामित्र जी सोच रहे कि अब क्या करे, धनुष टूटने की समस्या तो हल हो गई लेकिन ये माला पहनाने की जबरदस्त समस्या आई, अब क्या करे। लक्ष्मण जी के सामने विश्वामित्र जी देख रहे, यहाँ भगवान ने नजर उठाकर लखन के सामने पुनः इशारा किया, इस प्रसंग में इशारे बहुत आते, चलकर आगे परशुराम जी के प्रसंग में भी इशारे आते। तो भगवान ने कुछ इशारा कर दिया, तो इशारे को समझते ही लखन जी ने सर हिलाकर मना कर दिया, नहीं महाराज क्षमा करें, आज्ञा का उल्लंघन हो, तो मन ही मन कह दिया नहीं होगा। राम जी ने कुछ कहा और लखन ने मना कर दिया। विश्वामित्र जी ने देख लिया कि दोनों भाइयों ने कुछ गुप्तगू कर ली। कौन कहता है कि आंखों को जुबा नहीं होती, कौन कहता कि आंख को बानी नहीं होती, आंख अपने ढंग से बात कर लेती है। दोनों भाइयों ने बात कर ली, विश्वामित्र जी पकड़ लेते हैं और राम जी ने कुछ कहा, लखन ने मना कर दिया। विश्वामित्र जी ने देखा और लखन को बुलाया, लखन इधर आओ, राम जी ने तुम्हें कुछ कहा और तुमने मना कर दिया, क्या बात है। बोले बाबा ये नहीं हो सकता। बोले है क्या, कि सरकार मुझे इशारे में ये कह रहे हैं कि लखन तुम शेष नारायण के अवतार हो और तेरे पर धरती है, तेरे सर पर तो जरा धरती सीता जी खड़ी है, इतनी धरती जरा ऊपर उठा लो तो जानकी मेरे कंठ में जयमाला पहना दे। भगवान मुझे ये कह रहे हैं महाराज, लेकिन मैंने मना कर दिया कि धरती मेरे सर पर है तो एक और से थोड़ी उठेगी, उठेगी तो पूरी उठेगी, एक भाग थोड़ा उठेगा तो पूरी धरती उठने से तो आसमान तो वैसी की वैसी बनी रहेगी। विश्वामित्र जी ने कहा तेरी बात भी ठीक है लेकिन अब करें क्या ये समस्या। बोले बाबा कंठ में जयमाला पहनाई जाए ये यदि करना हो तो मुझे काम सौंप दो, अभी माला कंठ में हो जाए। भगवान विश्वामित्र जी ने लखन को आज्ञा दे दी। भगवान मर्यादा से खड़े हैं, सीता जी कोशिश कर रही है पहुंचती नहीं, हजारों निगाहें दोनों के ऊपर और क्या होगा किसी को पता नहीं। इतने में अचानक लखन जी आकर भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं और अचानक लखन को प्रणाम करते देखकर भगवान को लगा कि उसको अचानक क्या हुआ। तुरंत भगवान झुके और जैसे हाथ पकड़ने गए, जयमान राम उर्मेली, भगवान को जैसे झुक के देखा सीता जी ने और जानकी जी को अवसर मिल गया और जयमाला भगवान के कंठ में डाल दी गई। देवताओं ने जय जयकार किया, भगवान जब खड़े हुए तो कंठ में माला गिरी हुई। भगवान ने मुस्कुराते हुए लखन को कहा कि लखन तूने मुझे पराजित कर दिया।